प्रार्थना का विशेष सुयोग। प्रकृति और प्रत्यक्ष दर्शन के द्वारा, अपने विधान के द्वारा और अपनी आत्मा के प्रभाव के द्वारा ईश्वर हम लोगों से बातें करता है, किंतु ये यथेष्ट नहीं है। हमें भी तो अपने विचार उनके समक्ष रखने चाहिए। आध्यात्मिक जीवन और स्फूर्ति के लिए हमें सदा ईश्वर के साथ साक्षात्कार और समागम करना पड़ेगा। हम उनकी ओर ध्यान अवस्थित हो सकते हैं, उसके कार्यों का गंभीर चिंतन कर सकते हैं, उनकी करुणा और उपकार का मनन कर सकते हैं, किंतु समागम का पूर्ण श्रेय यही नहीं। समागम की पूर्णता तभी होगी जब हम ईश्वर से अपने वास्तविक जीवन के बारे कुछ कहें। प्रार्थना में हमारा हृदय ऐसा खुल जाता है जैसे वह एक मित्र के सामने खुल गया हो। हम क्या हैं यह बतलाने के लिए प्रार्थना आवश्यक नहीं, किंतु प्रार्थना इसलिए आवश्यक है कि हम उसका स्वागत करने के योग्य बने। प्रार्थना ईश्वर को हमारे पास खिंच नहीं लाती, किंतु ये हम ही को ईश्वर के पास भेज देती है। जब यीशु संसार में निवास कर रहे थे तो उन्होंने अपने शिष्यों को प्रार्थना करने की उचित रीति बतलाई थी। उन्होंने शिष्यों को नित्य की आवश्यकताएं और अपनी सारी चिंताएं ईश्वर के पैरों पर अर्पित कर देने का आदेश दिया था, और उन्होंने शिष्यों को ये वचन दिया था कि उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार की जाएंगी। यीशु का ये वचन जैसे शिष्यों के लिए सत्य है, वैसे ही हम लोगों के लिए भी सत्य है। जब यीशु मनुष्यों के बीच जीवन यापन कर रहे थे तो वे स्वयं प्रार्थना में लगे रहते थे। हमारे मुक्तिदाता हम मनुष्यों के सदृश होकर हमारी आवश्यकताओं और दुर्बलताओं का नमूना हो गए। इसीलिए तो वे प्राणी हुए और उन्होंने याचना की कि परमपिता उन्हें शक्ति और सामर्थ्य दें, ताकि सारी पीड़ाएं और क्लेश वे धीरता के साथ सहन कर सकें। सब बातों में वे हमारे आदर्श हैं, किंतु निष्पाप होने के कारण उनकी प्रकृति दुर्बलताओं से पृथक रहती। उन्होंने पाप संकुल जगत में संघर्ष किए, आत्मा की यातना सही। उनके अंतर के मानव ने प्रार्थना को अवांछनीय बना दिया, और प्रार्थना अब लाभप्रद भी हो गई। जब जब वे प्रार्थना में बैठे ईश्वर के साथ संभाषण करते तो आत्मा में शांति और आनंद भर जाते। अब यदि मनुष्य के त्राता और ईश्वर के पुत्र ने प्रार्थना की विशेष आवश्यकता समझी, तो हम दुर्बल, पापी और विनाशशील लोगों को उसकी कितनी आवश्यकता है, ये समझने की बात है। हमें तो नित्य प्रार्थना में ही डूबे रहना चाहिए। हमारे स्वर्गीय पिता हम पर वरदानों की झड़ी लगा देने को अपने भरे हुए हृदय से तैयार बैठे हैं। हमें ये विशेष अधिकार प्राप्त है कि अगाध प्रेम के सोते से जितना चाहें पी ले। लेकिन आश्चर्य तो इस बात का है कि हम तब भी कितना कम प्रार्थना करते हैं। ईश्वर अपने प्रिय पुत्रों से नीच तक की सच्ची प्रार्थना सुनने को तैयार हैं, किंतु हम कितने गिरे हुए हैं कि प्रार्थना करने में आनाकानी करते हैं और अपनी आवश्यकताएं बताने में हिचकिचाते हैं। जब ईश्वर के असीम प्रेममय हृदय में मनुष्यों के प्रति अगाध ममत्व भरा है और हमें अधिक से अधिक वरदान देने को वह लालायित हैं, तो हमारी भोग लिप्सा में डूबे और पापी मन को प्रार्थना के इतने विरुद्ध और विश्वास तथा भक्ति से इतनी दूर देखकर स्वर्ग के दूतगण हमारी नीचता की कैसी निकृष्ट धारणा बनाते होंगे। दूतगण प्राणपन से ईश्वर के पैरों पर झुकना चाहते हैं, वे उसके समीप रहना बहुत पसंद करते हैं। ईश्वर के साथ समागम उनका श्रेष्ठ आनंद है। किंतु जिन मनुष्यों को ईश्वर की सहायता और अनुग्रह की अवांछनीय आवश्यकता है, वे ही ईश्वर की विभूति के बिना, ईश्वर के समागम के बिना जीवनाधिकार में गिरते पड़ते चलना श्रेयस्कर समझते हैं।
जो प्रार्थना नहीं करते वे शैतान के चंगुल में फंस जाते हैं, जिन पर पापों का घटाटोप अंधकार छाया रहता है। मनुष्य के शत्रु की चपेट में पड़कर वे पाप में संलग्न हो जाते हैं, और ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर प्रदत्त प्रार्थना के विशेष अधिकार को वे ठुकरा देते हैं। जब प्रार्थना वह कुंजी है जो विश्वास के हाथों से ईश्वर की सारी निधियों के अगार स्वर्ग के द्वार खोल सकती हैं, तो ईश्वर के पुत्र और पुत्री प्रार्थना करने से क्यों पीछे भागती हैं? जब तक हम निरंतर प्रार्थना से संलग्न नहीं रहते और पूरी सावधानी से सतर्क नहीं रहते, तब तक हम सदा निश्चेष्ट और असावधान होने के डर में पड़े रहते और सत्य के पथ से विमुख हो जाने के खतरे में गिरे रहते हैं। वह सदा ये चाहता है कि हम अनुनय, विनय और विश्वास द्वारा ईश्वर की विभूति और अनुग्रह न प्राप्त कर लें और परीक्षाओं का सामना करने की सामर्थ्य न पावें। कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरी करने से ही हम ईश्वर से आशा कर सकते हैं कि वो हमारी प्रार्थना सुनेगा। उन शर्तों में एक शर्त ये है कि हम उसकी सहायता की आवश्यकता हृदय में महसूस करें। उसने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं प्यासे पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, यशाया 44:3। अतएव जिन्हें पवित्रता और धर्म की सच्ची भूख और प्यास हैं, जिन्हें ईश्वर की सच्ची ललक है, उन्हें ये विश्वास कर लेना चाहिए कि उनकी भूख, प्यास और ललक शांत की जाएगी। ईश्वर के वरदान के लिए पवित्र आत्मा के प्रभाव की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा के प्रभाव के लिए हृदय के कपाट खुले रहने चाहिए, अन्यथा ईश्वर का आशीर्वाद मिल ही नहीं सकता। हमारी आवश्यकताएं स्वयं हम लोगों से बहस कर रही हैं और हमारे उद्धार के लिए खुद पर ओर तकरीर करती हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ईश्वर को ढूंढ लेना बहुत जरूरी है। उसने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा पर उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों करना देगा? रोमियो 8:32। यदि हम हृदय में पाप को छिपाए रखें और किसी जाने पहचाने पाप में जुटे रहें तो ईश्वर हमारी एक भी न सुनेगा। किंतु प्रायश्चित में डूबे हुए मग्न हृदय की सभी प्रार्थनाएं स्वीकृत होती हैं। जब सभी भूले सुधर गईं तो हमें निश्चित विश्वास करना चाहिए कि हमारी अर्जी मंजूर होगी। ऐसे तो हम में कोई गुण नहीं जो हमारी सिफारिश ईश्वर से कर दे, किंतु यीशु की उदारता ही वह वस्तु है जो हमारी रक्षा कर सकती है। उनका लहू ही हमें धोकर निर्मल कर सकता है। फिर भी हमें कुछ करना है ही, और वो है ईश्वर की दी हुई शर्तों को पूरा करना। प्रार्थना स्वीकार कराने की दूसरी शर्त विश्वास है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को बदला देता है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मरकुस 11:24। क्या हम उसके वचन पर पूरी तरह विश्वास करते हैं? यीशु की प्रतिज्ञाएं असीम हैं, विस्तृत उसका क्षेत्र है। जिसने प्रतिज्ञा की है वो विश्वास योग्य है। यदि हम जिन चीजों को मांगे और वे हमें न मिली, तब भी हमें विश्वास ये करना चाहिए कि ईश्वर सब सुन रहा है और वो निश्चय हमारी मांगे पूरी करेगा। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अपनी गलतियों और अदूरदर्शिता के कारण हम ऐसी वस्तुएं मांग लेते हैं जो हमारे हित के लिए न होंगे, किंतु हमारे स्वर्गीय पिता प्यार से उनकी जगह ऐसी वस्तुएं दे देता है जो हमारे कल्याण के लिए सबसे आवश्यक हैं। उन चीजों को हम स्वयं मांगते। यदि हम में ईश्वरीय ज्योति होती और हम उस ईश्वरीय प्रकाश में सभी वस्तुओं के उचित रूप और गुण देख लेते। यदि हमारी प्रार्थनाएं पूरी न होती मालूम पड़े तो हमें ईश्वर की प्रतिज्ञा पर अडिग रहना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना स्वीकृत होने का समय कभी न कभी अवश्य आएगा और आवश्यक वरदान अवश्य मिलेंगे। किंतु ये विचार करना कि सभी प्रार्थनाएं एक ही तरह से सुनी जाएगी और जिस विशेष वस्तु की आवश्यकता है वो जरूर मिलेगी, निरीकल्पित ढोंग है। ईश्वर गलती करने से बहुत परे है और इतना नम्र है कि सच्चे मार्ग के पथिक को किसी भी आवश्यकता की वस्तु से वंचित नहीं रख सकता। अतएव यदि अपनी प्रार्थना का कुछ भी फल तुरंत न देखे, तब भी उन पर विश्वास और भरोसा करने से पीछे मत मुड़िए। उनकी इस विश्वसनीय प्रतिज्ञा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, पर विश्वास कीजिए।
यदि हम लोग अपने संशय और भय से प्रेरित हो अपनी विचारधारा परिवर्तित कर लें, अथवा जिन वस्तुओं को पूरी तरह देख नहीं सकते उनके रहस्य को भी स्वयं सुलझाने को आगे बढ़ जाएं और विश्वास तथा भक्ति के उदय के लिए ठहरे नहीं, तो उलझन बढ़ जाएगी और समस्या और गंभीर हो जाएगी। किंतु यदि नम्रता के साथ अपनी दुर्बलताओं को पहचानते हुए हम ईश्वर के पास विनीतता और भक्ति के भाव भरे हृदय से आ जाएं और उस सर्वज्ञ से अपनी सारी आवश्यकताएं कह सुनाएं, तो वह सर्वदृष्टि और सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारी चित्कार सुनेगा
और हमारे करुण क्रंदन से निश्चय ही पिघल उठेगा तथा हमारे हृदय में ज्योति बिखेर देगा। सच्ची प्रार्थना के द्वारा हम उस अनादि अनंत परमेश्वर के मस्तिष्क के साथ संबंध प्रथित कर लेते हैं। हमारे पास कोई प्रत्यक्ष साक्षी इस बात की नहीं, किंतु बात यथार्थ ऐसी है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे मुक्तिदाता करुणा और प्रेम से गदगद होकर अपना गंभीर मुख हम पर झुका लेते हैं। हम उनके हाथों के स्पर्श का अनुभव नहीं कर सकते, किंतु सचमुच उनके कोमल हाथ ममता और दयापूर्ण स्नेह में हमारे ऊपर फिरते रहते हैं। जब हम ईश्वर से क्षमा और उपकार की याचना करने जाएं, तो अपने हृदय में प्रेम और क्षमा के माप भर लें। अन्यथा हम कैसे ये प्रार्थना कर सकते हैं कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर। मत्ती 6:12। ऐसी प्रार्थना करते हुए हम किसी प्रकार क्षमाहीन भाव से क्रूर बने रह सकते हैं। यदि हम अपनी प्रार्थनाओं को सुनाना चाहते हैं और उनकी स्वीकृति के इच्छुक हैं, तो जिस मात्र में स्वयं क्षम्य होना चाहते हैं, उसी मात्र में दूसरों को भी क्षमा करें और दूसरों की प्रार्थना भी स्वीकृत करें। प्रार्थना सुनाने और स्वीकृत कराने की एक और शर्त है, प्रार्थना करने में अध्यवसाय। यदि हम भक्ति दृढ़ और अनुभव पक्के करना चाहते हैं, तो हमें प्रार्थना में लगे रहना आवश्यक है। हमें कहा गया है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागते रहो। रोमियों 12:12, कुलुस्सियों 4:2। पितर विश्वासियों की ये कहकर उत्साह देता है, संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। 1 पत्रस 4:7। पावल आदेश देता है, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन धन्यवाद के साथ प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर सामने जनाए जाएं। फिलिप्पियों 4:6। बहुदा ने कहा है प्यारो, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। यहूदा 20:21। अखंड प्रार्थना आत्मा और ईश्वर को अटूट संबंध में जोड़ देती है और तभी ईश्वर से अनंत जीवन का स्रोत हमारे जीवन में प्रसारित होता है और हमारे जीवन से पवित्रता तथा शुद्ध भावनाएं ईश्वर के पास प्रवाहित होती है। प्रार्थना में अध्यवसाय, धैर्य और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। ऐसा दृढ़ हो जाइए कि कोई भी वस्तु आपको प्रार्थना में बाधा न पहुंचा सके। यही चेष्टा कीजिए कि आपके और यीशु के बीच का समागम बराबर बना रहे। इस मौके की ताक में सदा लगे रहिए कि जहां प्रार्थना होती रहे वहां उपस्थित हो सकें। जो कोई भी सचमुच ईश्वर का अन्वेषण कर रहे हैं, वे प्रार्थना सभाओं में सदा सम्मिलित होते हुए कर्तव्य में एकनिष्ठ और प्रार्थना से जितना भी लाभ उठा सकें उसमें पूरे उद्योगी और प्रयत्नशील देखे जावेंगे। जहां में भी स्वर्गीय प्रकाश की एक रश्मि मिलने की आशा होगी, वहीं उपस्थित होने के स्वर्ण अवसर को वे प्राणपन से उपभोग करेंगे और पूरी तत्परता से वहां उपस्थित होंगे।
हमें अपने परिवार में प्रार्थना करनी चाहिए और गुप्त प्रार्थना भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि यही आत्मा को जीवन देती है।
बिना प्रार्थना के वृद्धि पाना असंभव है और केवल परिवार के साथ अथवा जन समाज के साथ प्रार्थना करने से ही पूरा लाभ नहीं हो सकता। जब आप अकेले हैं तो अपनी आत्मा को ईश्वर के निरीक्षण के लिए खोल दीजिए। गुप्त प्रार्थना केवल ईश्वर द्वारा ही सुनी जाती है। ऐसी प्रार्थना किसी जिज्ञासु के कान में नहीं पहुंच पाती। गुप्त प्रार्थना में आत्मा चतुर्दिक के प्रभाव से उद्वेग और आवेश से मुक्त रहती है। ऐसी अवस्था में ही वो धीरे धीरे और पूरी लगन से ईश्वर के समीप पहुंचेगी। ईश्वर हृदय की फूटती वाणी सुन लेगा, गुप्त आकांक्षाएं देख लेगा और उसके कोमल स्पर्श से मधुरेशा और प्रकाश हृदय में भर जावेगा। गुप्त प्रार्थना में गंभीर, शांत और सरल विश्वास द्वारा आत्मा ईश्वर का समागम करती है और अपने चतुर्दिक ईश्वरीय विभा एकत्र करती है, ताकि शैतान से द्वंद करने में वो समर्थ हो सके। ईश्वर ही हमारी शक्तियों का गण है। अपनी व्यक्तिगत कोठरी में प्रार्थना कीजिए। जब अपने दैनिक कार्य में संलग्न हो, तब अपने हृदय को खोजकर ईश्वर का ध्यान कीजिए। इसी रीति से हनुक ईश्वर के साथ साथ चलता था। गुप्त प्रार्थनाएं ईश्वर के सिंहासन के पास सुगंधित धूप की तरह ऊपर उठती है। जिसका हृदय परमेश्वर पर स्थिर रहता है उसे शैतान कभी हरा नहीं सकता। कोई भी स्थान ऐसा नहीं, कोई भी समय ऐसा नहीं जब और जब ईश्वर से प्रार्थना द्वारा ईश्वरोन्मुख करने से रोके। जन संकुल पथों में, व्यापार अथवा व्यवसाय की भीड़ में भी ईश्वर के पास अर्जी भेजने का उचित समय और स्थान है। नहेमिया ने राजा अर्तक्षत्र के पास निवेदन करते हुए भी ईश्वर से प्रार्थना की थी। हम भी ईश्वर की शक्ति और सहाय प्राप्त करने को हर समय प्रार्थना में प्रवृत्त हो सकते हैं और जहां भी रहेंगे उनसे समागम संभव ही होगा। हृदय के द्वार हमें सदा उन्मुक्त रखना चाहिए और सर्वदा आमंत्रण प्रेषित करना चाहिए ताकि यीशु हृदय सिंहासन पर आविराजें और स्वर्गीय अतिथि की तरह रहें। हमारे चतुर्दिक का वातावरण दूषित और घृणित हो सकता है। वैसी अवस्था में हमें दूषित वायु में सांस न लेना चाहिए किंतु स्वर्गीय प्राणप्रद वायु में जीवित रहना चाहिए। सच्ची प्रार्थना के द्वारा हम दूषित कल्पना और अपवित्र भावनाओं का पूर्ण बहिष्कार कर सकते हैं। जिन्होंने अपने हृदय को ईश्वरीय आशीष और सहायता पाने के लिए खोल दिया वे पृथ्वी के वातावरण से कहीं पवित्र वातावरण में जीवन यापन करेंगे और स्वर्ग के साथ नित्य संबंध में जुटे रहेंगे। हमें यीशु को और भी स्पष्ट रूप में देखना और शाश्वत सत्य के मूल्य को उचित रीति से समझना चाहिए। पवित्रता में विशेषता यह है कि वो ईश्वर के पुत्रों के हृदय पूरी तरह से पूर्ण कर देता है। अपने हृदय की पूर्णता के लिए हमें ईश्वरीय प्रकाश और स्वर्गीय वस्तुओं को पूरी तरह जानने की चेष्टा करनी चाहिए। आत्मा को ऊर्ध्वमुखी कीजिए ताकि ईश्वर स्वर्गीय वायु का एक झोंका प्रदान कर सकें। हमें ईश्वर के इतने समीप रहना चाहिए कि प्रत्येक अप्रत्याशित कष्ट के समय हमारा मन अनायास घूमकर उनकी ओर केंद्रित हो जाए, ठीक जैसे फूल सूरज की ओर घूम जाता है।
अपनी जरूरतें, सुख, दुख, चिंताएं और भय सभी को ईश्वर के सामने खोल कर रख देना चाहिए। यह मत समझिए कि आप उन पर बोझ लाद रहे हैं अथवा परेशान कर रहे हैं। वे बोझ से उबते नहीं, परेशानी से थकते नहीं। जो आपके माथे के केश गिन ले सकता है वो अपने बच्चों की जरूरतों से घबराएगा? प्रभु बहुत तरस खाता है और दया करता है, याकूब 5:11। उनका प्रेममय हृदय हमारे दुख से पिघल पड़ता है और हमारे कहने मात्र से द्रवित होता है। जिस चीज से भी आप घबरा उठे उसे उनके पास ले जाइए। उनके सामने कोई भी चीज बहुत बड़ी अथवा भारी नहीं। वे ग्रह मंडल और सारे विश्व को संभाले हैं। उनके सामने कौन सी चीज भारी होगी? हमें अशांत करने वाली कोई भी वस्तु उनके लिए छोटी नहीं। हमारे जीवन के काले अध्यायों में कोई भी इतना कालिमापूर्ण नहीं जिसे वे नहीं पढ़ सकते। हमारी गंभीर से गंभीर उलझन उनके लिए आसान है। कोई ऐसी विपत्ति हम पर नहीं आ सकती। कोई ऐसी चिंता हमारी आत्मा को झंझोरित नहीं कर सकती। कोई हर्ष हमें खुश नहीं कर सकता। कोई प्रार्थना ऐसी नहीं हो सकती जिसे हमारे परमेश्वर नहीं जानते और जिसमें वे तुरंत हाथ नहीं बटाते अथवा रुचि नहीं दिखाते। वह खेदित मन वालों को चंगा करता और उनके शोक पर पट्टी बंधता है। भजन संहिता 147:3। ईश्वर के साथ प्रत्येक प्राणी का संबंध ऐसा गहरा है कि जैसे प्रत्येक व्यक्तिगत आत्मा के लिए ही उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को सौंपा। अन्य प्राणी मानो है ही नहीं। यीशु ने कहा है, तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे यह नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप है, तुमसे प्रीति रखता है। मैंने तुम्हें चुना कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। यूहन्ना 16:26-15:16। लेकिन यह ध्यान रहे कि यीशु के नाम से प्रार्थना करनी एक बात है और प्रार्थना के शुरू और आखिर में यीशु का नाम लेना दूसरी बात है। यीशु के नाम से प्रार्थना करना बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ऐसी प्रार्थना यीशु के मन और प्रभा से निकलेगी। और जब तक उनकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास है तथा जब तक उनके कार्य में दत्तचित है, तब तक हमारी उनके नाम की प्रार्थनाएं उनकी ही प्रार्थनाएं रहेगी। ईश्वर यह नहीं चाहता है हम में से कोई साधु या फकीर हो जाए।
दुनिया छोड़ दे और जंगल में जाकर तपस्या और पूजा करे। जीवन यीशु के जीवन के अनुरूप होना जरूरी है। पर्वत और जन समुदाय के बीच पीसने वाला जीवन यीशु का था, वैसा ही जीवन हम लोगों का हो। जो कुछ नहीं करता, केवल प्रार्थना में लगा रहता है, वह शीघ्र ही प्रार्थना करना बंद कर देगा। उसकी प्रार्थना दिनचर्या की तरह थोथी रह जाएगी। जब आदमी सामाजिक जीवन से अलग आ पड़ते हैं, ईसाई के कर्तव्य से कन्नी काटकर दूर जा पड़ते हैं, जब वे अपने प्रभु के लिए, जिन्होंने उनके निमित्त कठिन परिश्रम किया, कोई काम नहीं करते, तब उनकी प्रार्थना में कोई तथ्य नहीं रहता और उनकी भक्ति में कोई प्रेरक शक्ति और श्रद्धा नहीं रहती। ऐसे आदमी की प्रार्थना स्वार्थपूर्ण और वैयक्तिक हो जाती है। ऐसे आदमी मानव कल्याण के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, यीशु के साम्राज्य के उत्थान के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, मनुष्यों के दुख निवारण और उद्धार के लिए अपने में सामर्थ्य की याचना नहीं कर सकते। जब हम परमेश्वर की सेवा में एक दूसरे को उत्साहित और बलवंत करने के स्वर्ण अवसर को ठुकरा देते हैं, तब हमें हानि उठानी पड़ती है। हमारे मन से उसके वचन की सच्चाई की स्पष्टता हट जाती है, हमारा ज्ञान कम हो जाता है, हमारे हृदय पर उसकी पवित्र करने वाली शक्ति का प्रभाव घट जाता है और हम आत्मिक जीवन में शिथिल होते जाते हैं। एक दूसरे के प्रति सहानुभूति न दिखलाने के कारण हम क्रिश्चियवानी संगति की विशेषता को खो बैठते हैं। जो अपने को दूसरों की पहुंच से बाहर रखता है, वह ईश्वर के ठहराए हुए कर्तव्य को पूरा नहीं करता है। सामाजिक प्रवृत्तियों का होना मनुष्य के चरित्र में आवश्यक है। यही हमें दूसरों के साथ सहानुभूति और प्रेम के बंधन में बांधती हैं और इस मेल मिलाप से ही हमारे अंदर ताकत और जोश ईश्वर की सेवा में प्रवृत्त होने के लिए आते हैं।
यदि ईसाई लोग दूसरों से मिले और ईश्वर के प्रेम की चर्चा करें तथा बहुमूल्य सत्य और मुक्ति का विचार विनिमय करें, तो उनका हृदय शुद्ध होगा और दूसरे का हृदय भी निर्मल होगा। संभाषण द्वारा हम नित्य स्वर्गीय पिता के बारे नए ज्ञान प्राप्त करेंगे, फिर उसके प्रेम का वर्णन करेंगे और वो सब करते करते हमारा हृदय सरगर्म और उत्साहित होता जाएगा। यदि हमने यीशु के बारे अधिक और स्वार्थ के विषय में कम विचार और बातें की हैं, तो यह निश्चय जानिए, हम इनकी उपस्थिति अधिक प्राप्त करेंगे। जब जब हम वो प्रमाण पा लें कि ईश्वर हमारी फिक्र करता है, यदि तब भी ईश्वर का ध्यान लगावें, हमें सदा उसे अपने हृदय में रखना होगा, उसका ध्यान करना होगा और उनके बारे संभाषण तथा प्रशंसा में प्रवृत्त होना पड़ेगा। हम सांसारिक वस्तुओं के विषय में अधिक बातें करते हैं, क्योंकि इन वस्तुओं से हमारा मतलब है। हम अपने मित्रों के विषय में बातें करते, क्योंकि हम उन्हें प्यार करते हैं। हमारे आनंद और शोक उनसे मिले हुए हैं। फिर भी मित्र से ईश्वर को प्यार करने के कुछ बड़े कारण हैं। संसार की सबसे स्वाभाविक चीज तो ये होनी चाहिए कि मस्तिष्क में सबसे पहले ईश्वर के विचार ही उठें, उन्हीं की प्रशंसा की जाए और उनकी नम्रता और कल्याणकारी शक्तियों का संभाषण किया जाए। दुनिया की सुंदर और मोहक वस्तुओं का जो बहुमूल्य उपहार हम लोगों को मिला, वो इसलिए नहीं मिला कि हमारा सारा ध्यान और प्रेम उन्हों में लग जाए और ईश्वर के लिए हृदय में कुछ भी स्थान न हो, प्रेम न हो। इसके उल्टे हमें इन उपहारों से सदा स्वर्गीय पिता को प्रवृत्त होने का संकेत पाना चाहिए और उन्हीं उपहारों के द्वारा प्रेरणा पा अपने स्वर्गस्थ परमपिता की उदारता और दान की भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए, तभी हमारी कृतज्ञता प्रकट होगी। यदि हम ऐसा नहीं करते, तो निश्चय ही हम दुनिया की सबसे नीची तराई के गड्ढे के समीप वास करते हैं। हमें उस पवित्र स्थान की ओर आंखें उठाकर देखना चाहिए, जिनके द्वार खुले हैं और जहां से ईश्वर की महिमा की धवल रश्मियां उस ख्रीष्ट के मुख की दीन कर रही है, जिसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं और वो उसका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। इब्रानियों 7:24। परमेश्वर की करुणा के कारण और उनकी आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्यों के लिए करता है, हमें उसकी हार्दिक प्रशंसा करनी चाहिए। हमारी प्रार्थना में केवल यंत्रणाएं ही भरी न हों। ये तो अच्छा नहीं कि हम प्रतिदिन अपनी आवश्यकताओं की उधेड़बुन में ही पड़े रहें,
और जो विपुल पुरस्कार हमें मिल चुका है उसकी कुछ चिंता ही न करें। हम प्रार्थना भी उतनी अधिक नहीं करते, लेकिन उससे भी कम अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। समझिए कि कृतज्ञता और धन्यवाद के शब्द तो हमारे हृदय से निकलते ही नहीं, सदा तो उनके उपकारों से हम लदे जा रहे हैं, सदा क्षमा के वरदान पा रहे हैं, फिर भी हम कितने नीच हैं कि कृतज्ञता के भाव प्रकट नहीं करते। हमारे लिए उसने जो कुछ किया इसके लिए हम उसकी प्रशंसा तक नहीं करते। पुराने समय में जब इस्राएल ईश्वर की सेवा के लिए एकत्रित हुए तो ईश्वर ने कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने भोजन करना और अपने अपने घराने समेत उन सब कामों पर जिनमें तुमने हाथ लगाया हो और जिन पर तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की आशीष मिली हो आनंद करना। व्यवस्था विवरण 12 आयत 7। ईश्वर की महिमा के लिए जो कुछ भी आप करें प्रफुल्लित होकर करें, प्रशंसा के मधुर गीत और कृतज्ञता के संगीत के साथ करें, न कि उदासी और दुख के साथ। हमारे ईश्वर महत्वपूर्ण और दयालु पिता हैं। उनकी सेवा उदासी और दुख का कारण नहीं होना चाहिए। उनकी पूजा और सेवा में तो उल्लास के साथ प्रवृत्त होना चाहिए। ईश्वर ने अपने पुत्रों के लिए मुक्ति और आनंद के इतना बहुमूल्य उपहार दिया तो वो कैसे उनसे क्रूरता के साथ काम ले सकता है? वो तो उनका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, और जब वे उसकी पूजा करते हैं तो वो सदा उनके साथ रहता है, उन्हें सांत्वना और आशीर्वाद देता है और उनके हृदय में उल्लास और प्रेम भर देता है। ईश्वर ये चाहता है कि उसकी संतान उसकी सेवा करने में चैन प्राप्त करे और उसके कार्यों के संपादन में आनंद न कि दुख प्रकट करे। वो ये भी चाहता है कि जो कोई भी उसकी सेवा करे वो ईश्वरीय प्रेम और ममता के बहुमूल्य वरदान पाकर जाए। इन वरदानों को पाकर वो अपने दैनिक जीवन के सभी कर्तव्यों में प्रसन्न मन रहेगा और पूरी ईमानदारी तथा लगन से सारा कर्तव्य संपादित करेगा। हमें क्रूस के चारों ओर जुट जाना आवश्यक है। ख्रीष्ट और उसकी क्रूस ही हमारी एकनिष्ठ चिंतन के विषय होने चाहिए। इन्हीं के विषय में संभाषण करें और हमारे आनंद से भरे सारे उद्वत इन्हीं से प्रेरित हों। जिन जिन चीजों को हमने ईश्वर से पाया है उन सर्वों को याद रखना और सभी आशीर्वाद और उपहार के लिए उस परमेश्वर की कीर्ति और गुणों की प्रशंसा करना हमारा कर्तव्य है। तब हम उन्हीं हाथों पर अपने सारे जीवन को अर्पित कर सकते हैं जिन हाथों पर हमारी ही मुक्ति के लिए कील ठोकी गई थी। ईश्वर की गुणगान और प्रशंसा के पंखों पर चढ़ मन स्वर्ग के एकदम निकट उड़ चलेगा। स्वर्गीय दरबार में ईश्वर की आराधना गीत और बाह्य यंत्रों की मधुर ध्वनि के साथ होती है। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने हारा मेरी ईश्वर की महिमा करता है। भजन संहिता 50 आयत 23। तब हमारा कृतज्ञता ज्ञापन स्वर्गीय पूजा से कुछ कम ना रहेगा। हमें चाहिए कि उसमें हर्ष और धन्यवाद और भजन के साथ बड़ी भक्ति सहित उनके सम्मुख उपस्थित हुआ करें। यशाया 51 आयत 3।